क्यावर रामचंद्र जी मोर मुक्त वंशी वाले की एक दोहा याद आ गया एक कवि का, बड़ा अच्छा है। कांचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने मान बदाई रेखा दुर्लभत जना ये पियावर रामचंद्र की जय। इसको जो अर्थ है कि कंचन को जो त्याग करना है, रुपया के लोभ को जो त्याग करना है, यो कठिन नहीं सहज है। और स्त्री जिसे को जो सुख है को जो त्याग करना है जिसको भी कोई कठिन नहीं है, किंतु मान और बढ़ाई और ईर्ष्या इनको त्याग करना बहुत ही कठिन है। तो अभिप्राय को जो है कि कंचन और कामनी को त्याग कोई मामूली बात नहीं है, किंतु अपेक्षाकृत एक अपेक्षाकृत यह बात कही कि मान बढ़ाई ईर्ष्या को जो त्याग है जिसको इससे भी कठिन है, क्योंकि वर्तमान में ख्याल करके देखे जा रहे हैं तो ये मान बढ़ाई के प्रवाह के बीच के मन जो अपने जो अच्छे अच्छे समझे जाते हैं जिके भी ऐसो बह जाते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के बीच के मां कि संसार के मां मेरी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, संसार में मेरी कीर्ति हो, संसार में मेरो नाम हो और मेरी पूजा हो संसार के मां, और दूसरे की जो मेरे से अधिक पूजा है वह अपने को बर्दाश्त न हो, यह बात एक बहुत इसको त्याग करना कठिन है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता है साधु है या समझो कि संसार में भक्त बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, अपने को महात्मा प्रसिद्ध करने वाले हैं एक प्रकार से, यानी संसार में लोग भी उन्होंने अच्छा माने हैं, ऐसे पुरुषों के बीच में भी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ईर्ष्या ये दोष देखे जाते हैं। इन दोषों से रहित तो वास्तव में जो भगवत प्राप्त पुरुष है वो ही है, उसके सिवाय एक प्रकार से कुछ न कुछ दोष अंत तक है सौरभ है। बात यह है कि इस जमाने के बीच के मां गृहस्थी होकर के तो समझो कि परस्त्री को त्याग और पर धन को त्याग वो आजकल के समय में ऐसी बात मिल जाए तो मैंने अच्छा आदमी समझना चाहिए, महात्मा तो नहीं पर अच्छी श्रेणी को समझना चाहिए। ऐसे ही जो साधुओं के मां सन्यासियों के मां एकदम स्वरूप से ही समझो कि कंचन और कामनी को त्याग हो गए तो अपेक्षा करते मैंने अच्छे आदमी समझना चाहिए, ज्ञानी महात्मा तो नहीं, इतने मात्र से ज्ञानी महात्मा तो नहीं, क्योंकि इनसे जबर त्याग जो है मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को त्याग इसे जबर त्याग है। मान की अपेक्षा बढ़ाई को त्याग कठिन है, क्योंकि बढ़ाई के लिए कीर्ति के लिए मान को भी त्याग कर दे और मान बढ़ाई दोनों को त्याग कर दे तो देखिए आपने ईर्ष्या के लिए मान अमृत जो है को जो त्याग है कठिन है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लक्ष्मों के बीच के मां भी अमृत के त्याग को असली भगवत प्राप्ति बतराई। हर्षा हर्ष भयोद बेगीर मुक्तो यह सत्य प्रिय, जो हर्ष रहित है अमृत रहित है माने ईर्ष्या से रहित है और जो भयता रहित है और उद्वेग से रहित है, तो चार संतलसा पकड़ लिया कि बस ये चारों को अभाव है तो मेरे भक्त बड़े प्यारे हो, जिसमें संसारिक वस्तु ने लेकर कोई चित्त में हर्ष नहीं है और किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं है और किसी को भी भय नहीं है और कोई प्रकार से भी जिसके चित्त में उद्वेग नहीं हुए, तो ये बात दिखाई। वर्तमान में तो समझो कि संसार के मान बढ़ाई की इच्छा के वास्ते और अपने शरीर की पूजा की इच्छा के वास्ते, अपने फोटो बुझाने की इच्छा के वास्ते, अपनी जीवनी को प्रचार करने के लिए समझो कि आपने लोग यहाँ तक कि दम्भ और पाखंड को भी बना में अंश आ जाए। जिका गया विद्या है, जिका तो है ही, और जिका ने अपने दृष्टि से लोग अच्छा माना है उनको भी पिंड जो है ये मान बड़ा प्रतिष्ठा तो नहीं छोड़े है। देखो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो फिर बात ही क्या है। और जो आदमी अपने को यह बात कहे कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मैं एक प्रकार से थी भगवान के पास में एकांत में बातचीत करूं हूं, मैं गुणातीत महात्मा हूं, मैं एक योगी हूं, इस प्रकार की जो ख्याति करे है वो तो लंबी पाखंडी है ही, किंतु जो एक प्रकार से थी दूसरा लोग इस प्रकार से करे है और वो उसमें स्वीकार कर ले है तो भी एक प्रकार से दम्भ को ही भाव है, वो भी द्वंदी है। मैं जैसे समझो कि स्वामी जी की राम सुख जी की बड़ाई करूं कि राम सुख जी महाराज ज्ञानी महात्मा है, राम सुख जी बैठा है दम को वे प्रतिकार को नहीं करे तो एक प्रकार से बात स्वीकृति है। तो वो भी मैं तो मैंने एक दम्भी पाखंडी तो नहीं किंतु मैंने दोष ही मानू हूं, परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं मानी जा सके। तो हरेक में यह बात घटानी चाहिए, समझनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो लक्षण घटते हैं वो तो बहुत उत्कोटि के लक्षण होते हैं और आरंभ के बीच के मां समझो कि ये संसार से उपरम होकर के मनुष्य परमात्मा की तरफ जब जाता है तो ये रिद्धि सिद्धियां उसको आकर घेर लेती है और रिद्धि सिद्धियां यदि उसमें विघ्न नहीं डाले तो देवता लोग आकर उपाधि करते हैं। ये सब बातों को सोच कर करके जिका ने उपसिद्धि कर है समझा, उसकी भी कभी झलक आ जाए मनुष्य को तो उसी भक्तों को त्याग कर देना चाहिए यदि अपनी आत्मा को कल्याण चाहे। महर्षि पतंजलि ने यह बात कही कि सिद्धियां जो है ये परमार्थ के विषय में समझो कि अपने विघ्न है। पातंजलि की योग दर्शन के तीसरे पाद में विभूति पाद जिसका नाम है उसमें महर्षि ने ये बात साफ दिखाई। और दूसरी बात यह है कि देवता लोग जो है ये उसको मान सत्कार करके कर के दबो देव है। ये जो आपने सहकाम जितना अनुष्ठान है ये साधक के लिए हानिकर है, ज्ञानी महात्मा तो समझो इनसे दूर रहते हैं। और बहुत से हमारे भाई लोग बहने लोग इस बात को तत्व से नहीं समझते हैं, तत्व से नहीं समझ कर करके और आसक्ति के कारण से, फल की इच्छा के कारण से, विषयों के मन आसक्ति इस कारण से वे संसार की तरफ चले जाते हैं। जिनको हम समझदार लोग कहते हैं ना वहां भी डूब खत हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सब कोई को इस काम के ऊपर खूब जोर लगाता रहूं, जिसका अपना प्रेमी है वो भी कोई आदमी इस प्रकार की कल्पना कर ले है कि कोई बीमार है, कोई रोगी है, फिर कह दे कि भी आप कह दो कि इसका आराम हो जाए तो आराम हो सके, आप दवाई बतला दो और वह दवाई ले ली जाए तो वह के आराम हो जाए। तो यह एक प्रकार से सैकम भाव है, और ये सैकम भाव यदि मेरे साथ के बीच में कोई आदमी जोड़ ले ना, तो यह समझना चाहिए कि परमार्थ के तत्व के विषय के बीच में वो कुछ भी नहीं समझ। हमारे घर में भी कोई बीमार हो जाए तो मैं कि नाड़ी देखनी या मैं वास्ते पथ वगैरह बतला देनू, ये एक कुटुंब के नाते काम पड़े है, और अपने जो मित्र भाई है उनके साथ में काम पड़े है, किंतु घर वालों के बीच में तो समझो कि श्रद्धा की भी कमी है और वास्तव में इस बात में बुरी भी समझे, दोनों ही कारण से ये दोष घटने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जिसका आपकी श्रद्धा माने है और वह इस प्रकार की बात में घटा दे रहे तो वह जिका की श्रद्धा नहीं है समझा, बना कि मैं उल्टी प्रशंसा करूं, इसने ऐसे प्रशंसा करूं कि श्रद्धा कर करके के और वो एक प्रकार से अपने आरोग्यता जो है मैंने उस काम में शामिल कर लिया है वो बहुत नीचे थे। तो हर एक माता बहनों को भाइयों को सबको ही मैं यह बात कहूँ, पर आजकल तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख स्त्रियां हैं, कोई भी एक प्रकार से समझो कि कोई भक्त है कि ज्ञानी है कि साधु है कि महात्मा है, आपने बिना एक प्रकार से आशीर्वाद दे दियो कि तेरे लड़को हो जाए वो लड़की हो जाए ये तुक मिल गई तो बोला कि ये महात्मा पुरुष है। अरे महात्मा का ये लक्षण ही नहीं है, कहीं हम गीता में भागवत में महाभारत में तो बहुत से पुस्तक पढ़ते हैं ना, महात्माओं के लक्षण कहीं नहीं आते हैं। महात्माओं के लक्षण तो आप गीता में देखो, गुणातीत के लक्षणों के मां भक्तिमान पुरुषों के लक्षणों में कहीं ये बात नहीं आती, बल्कि ये कलंक है। तो हर एक माता बहनों को एक प्रकार से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपने समझो कि आशीर्वाद दे दियो या वरदान दे दियो कि तुम्हारे लाख रुपया हो जाएगा, तुम्हारे जो दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो महात्मा नहीं हो तो बाबूजी की झोली में जेवड़ा है, उसे तो अपने सावधानी होनी चाहिए। पर जो अज्ञानी संसार के विषय में फंसा हुआ है, जिसे ही बाबू जिसे ही जीव है उसका भक्त बड़े तो निर्खा तो है, दोनों का नहीं है। तो हरेक भाई बहनों को इस विषय में खूब सावधान होना चाहिए कि जो परमात्मा की प्राप्ति को विषय है उसमें तो सैकाम भाव भी आ जाए, वो है तो सैकाम भाव एक प्रकार से कछु नीति श्रेणी को ही, किंतु में दोष नहीं है, वो सैकाम ही निष्काम के तुल है, निष्काम तो नहीं है, तुम्हें कमी तो जरूर है किंतु वो निष्काम के समान है। जैसे कोई आदमी आकर के किसी महात्मा ने या किसी साधु ने अच्छे पुरुष ने कहे कि मेरो ध्यान लगा दो भगवान में, मेरो ध्यान लगा दो, तो यह कामना हुई ना, तो यह कामना दोष नहीं है। यदि कहे कि भगवान की मैंने प्राप्ति करा दो तो यह दोष नहीं है, भगवान के मां मेरो प्रेम हो, भगवान में मेरी परम श्रद्धा हो, इसके लिए आप आशीर्वाद दो, आप एक प्रकार से भी कह दो कि भी तेरे हो जाएगो, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये तो एक प्रकार से कामना तो है, याचना तो है, किंतु है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो याचना है वो दोषी नहीं, वो मुक्ति में बाधक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं, बल्कि सहायक है। महात्मा होने के बाद तो यह इच्छा उसमें रह ही नहीं सकती है। एक प्रकार से यह इच्छा तो रही, कोई दोष की बात नहीं है, किंतु इसके सिवा कोई भी प्रकार की इच्छा जो एक प्रकार से महात्मा के साथ में स्तंभ जोड़ा है, पर महात्मा एक प्रकार से मैंने स्वीकार कर लिया है, तो वो महात्मा महात्मा नहीं है। और वो समझ जोड़ने वालों तो समझो कि गिरे वो है ही, एक मैंने साथ में तो महात्मा माने और साथ में वैसे आरोग्यता की इच्छा करे, पुत्र की इच्छा करे, धन की इच्छा करे, कोई भी संसार के पदार्थ की इच्छा करे, तो समझना चाहिए कि उसमें वो मूर्खता की हद है। निष्काम जो भाव है उसमें वो कलंक है, और निष्काम को इतना ऊंचा दर्जो है कि भगवान के ध्यान से भी बढ़कर के जो चीज है तो निष्काम भाव है। एक तरफ में तो भगवान को सहकाम भाव से ध्यान, हर एक तरफ समझो कि लोकोपकार का निष्काम कर्म, जग है, दान है, तप है, ये जो माने अच्छा कर्म, और उस अच्छा कर्मों के बीच में निष्काम भाव से उन कर्मों को जो संपादन है, या कर्म तो करे किंतु उसके फल को नहीं चाहे, कर्म के फल को नहीं चाह करके कर्म करने वाला जो है, ऐसा जो पुरुष है वो ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के और 12 के श्लोक में यह बात बताई है, अध्याय भी 12 श्लोक भी 12, कि ध्यानात कर्म फल त्यागस त्यागस शांति अनंतरम। ध्यानात माने ध्यान से ही कर्म फल को जो त्याग है, माने फल की इच्छा को त्याग है, फल में चाहते हुए कर्म को जो करना है वो पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है, और त्याग नहीं तो चाहे वो ध्यान ही करते रहो, ध्यान भी वैसे नीचे दर्ज है, किससे कि त्याग से निष्काम कर्म। यहाँ तक भगवान के अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करो चाहिए, चाहे सन्यासी थे, योगी थे, और मैं निर्गुणी न चाहती, जो कर्म के फल का नहीं चाह, जो कर्म के फल को नहीं चाहता है और कर्तव्य कर्म का पालन करता है, तो ऐसा जो पुरुष है वो सन्यासी है माने शांत योगी है, योगी है माने एक प्रकार से कर्म योगी है, वो सब कुछ है जिसमें यह बात है। तो आप ख्याल करो कि निष्काम को कितना ऊंचा दर्जा है, आज विचार करके देखो। कल एक मारवाड़ी विद्यालय की कमेटी थी, भाई बृजमोहन मोदी ने बहुत एक प्रेम से और सरलता से भावुकता से ही यह बात कही कि आपके तो नजर से ही लाखों रुपया आ सके है, तो ये आप जो विद्यालय है इसके लिए आपको कलकत्ता जाना है, तो मैंने बहुत से धनी लोग हैं तो उनके लिए आप संकेत कर दो, प्रेरणा कर दो, तो भी यहाँ आपने इसके लिए लाखों रुपया मिल सके है। मैं एक मिनट चुप होकर के फिर विनय से कही कि रुपया पैसा के वास्ते किसी व्यक्ति को कहने का मेरा काम नहीं पड़ता, तो इसके लिए मैं लाचार हूँ, आप जानते नहीं हो, दूसरे आदमी जो जानने वाले उनका पूछ सको हो, मेरे ऐसो महावरों नहीं है, मेरी यह नीति नहीं है। हाँ आप लोग सब आया हुए तो आप लोग आने में या कह सकूं समूह के बीच के माँ कि भाई इस जमा धन को अभाव है, सभी भाइयों ने समझो कि प्रयत्न करना चाहिए, अपने चेष्टा करनी चाहिए जिससे अपने इसको काम चले। और मैं यह बात एक प्रकार से आपको जैसे कहता हूँ कि भी सब कोई भाई इसके लिए प्रयत्न करे, चेष्टा करे, तो मैं उसको अच्छी बात समझता हूँ। क्योंकि जो आदमी मांगते हैं सदाई, तो उनके लिए तो कोई दोष की बात नहीं है। तो मैं यह समझू हूँ कि जो अपने लिए मांगे वो तो बहुत ही नीचे दर्जे की चीज है, और दूसरों के लिए मांगे तो इतनी नीचे दर्जे की चीज ही है। तो कबीर दास जी कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं और अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाश। मैं मेरा व्यक्तिगत शरीर के सुख और आराम के लिए मैं नहीं मांगता। कबीर दास कहते चाहे मैं मेरा मरण हो जाए या चाहे मैं मर जाऊं किंतु मांगू नहीं मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किंतु परमार्थ के लिए मैं किसी से मांग पेश करूं। परमार्थ के लिए या कि दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए यदि मैं मांग पेश करूं तो उसके मने लाज क्यों नहीं आती?
लाज नहीं आती,
हाँ मेरे श्रम को नहीं आता। अच्छा, तो इससे यह बात सिद्ध हो है कि फिर नहीं मांगू तो और उत्तम है।
हाँ।
तो अपने तो उत्तम से उत्तम जो है मैं लक्ष्य रखना
चाहिए।
उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखना चाहिए, उत्तम से उत्तम लक्ष्य रखोगा ना तो एक प्रकार से परमार्थ के लिए जो मांगने में लाज नहीं आवे इस श्रेणी में कहीं आप आ जाओ। और पहले वो श्रेणी पकड़ोगी मैं दूसरे के वास्ते तो मांगू, मेरे लिए नहीं मांगू, तो आगे जाके जब और नीचे उतरोगे तो फिर अपने लिए मांगना शुरू कर दोगे। तो ये लक्ष्य अच्छा है। तो कोई भी एक प्रकार से साधु है, संत है, कोई भक्त है कि योगी है, इस नाम से है, और वो एक प्रकार से थी भाइयों को, माइयों को, किसी को भी एक प्रकार से ये सहकाम भाव बतलाने के लिए प्रवृत्त हो जा रहा है। सहकाम सहकाम के लिए समझो कि दवाई भरा बतलाओ, उस वैद्यों की जो दवाई है उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं है। दाल ब्रिक की दवाई में तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक ओलियोपैथिक जो कोई भी दाल ब्रिक औषध है उसमें अपनी बिल्कुल राय नहीं है। फिर घर में कोई बीमार हो जाए और वो कभी डॉक्टर में बुला दू तो मैं के इच्छा के कारण, आग्रह के कारण बुलाना तो पड़े। कल ऐसा काम पड़ा कि मैंने चंदीला जी सेनानिया जो आके ठहरे हुए हैं तो उन्होंने हाथ के तो जो आगे हो तो बोले कि डॉक्टर बुला दू। तो मैं कहो भाई इतना रुचि है बुला दू, बुला दिया, दिखा दिए मैं बाकी और बात जो है बस ठीक है। तो घाव पट्टी के लिए तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, और खाने की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए डॉक्टर ने अपने बुलाया जावे और कोई आदमी कहने की भी बुला दो तो मैंने मनाई नहीं करते। और बुलाने के वास्ते समझो उसके शामिल होकर के ही रहते हैं, किंतु अपने भीतर की इच्छा नहीं रहती कि कोई डॉक्टर की दवाई इसको दी जाए खाने के लिए या एक प्रकार इसको सुई दी जाए, इसमें अपनी सम्मति नहीं रहती। तो मेरा कहना जो है इसी प्रकार से थी, आप सब भाइयों की सम्मति हो जावे तो आपने आयुर्वेद को प्रचार हो सके और डॉक्टर भाग है जो कमजोर हो सके। और मेरी बड़ी आवश्यकता है, किंतु दुख की बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे आयुर्वेद के काम करने वाले जो वैद्य हैं ये लोग भी एक प्रकार से डॉक्टरी दवाई काम में जाने लग गई और अपने देसी औषधा के बीच में मिश्रण करने लग गई। तो वो एक प्रकार से वो उसमें वर्ण संकरता आ जाती है। वो बड़ा भारी दोष है वर्ण संकरता को। वर्ण संकर क्या कि एक आपने जो आयुर्वेद की औषध उसके बीच में अंग्रेजी औषध दोनों मिली तो वो संकरता आ गई ना, मिलने वो ना ही संकरता है। तो जैसे वर्ण संकर, आश्रम संकर, जाति संकर, ये सब आदि बहुत से अपना संकर दोष माने जाते हैं, तो वो मिलने को ना ही संकर दोष है। तो जैसे ब्राह्मण तो अपने पुरुष और कोई वैश्य के घर के हुए तो ब्राह्मण वर्ण वैश्य वर्ण, तो उसमें जो पैदा हुआ उसको नाम है वर्ण संकर। ऐसे ही समझो कि एक सन्यासी है और एक गृहस्थी है, वे दोनों के संकर से पैदा हुए आश्रम संकर, और एक जाति संकर। माने इस प्रकार का ये दोष जो है उसी प्रकार को दोष यो है कि एक समझो कि विदेशी दवाई और एक देशी दवाई, तो उसमें संकरता को दोष आ जा रहा है। तो उससे क्या हानि होती है कि उससे कि समझो कि जैसे वर्ण संकर पैदा हो जा रहा है, जैसे अर्जुन ने गीता के वहां दिखाया है ना कि वर्ण संकर से कि जाति धर्म कुल धर्म वो सब विनाश हो जाते हैं। तो इस अपने जो औषधा है आयुर्वेद औषधा है उसके बीच के में संकरता को दोष हो जा रहा है, तो आयुर्वेद के लिए वो घातक है। आयुर्वेद है जिसको विनाश में प्राप्त होकर ले जा रहे। भगवान कहते हैं कि यदि मैं शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करूं तो इस संसार का भ्रष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला और बड़ी संकरता को पैदा करने वाला मैं हूं, तो ये बड़ा भारी दोष मैंने है। तो इस बात को ध्यान में रख करके, जैसे किसी का बुखार हो गई और वो बुखार जल्दी उतर जाएगी कुंडन को व्यवहार करने से, कुंडन बोल करके दूसरे भाई लेते नहीं है, तो उस कुंडन को पीस करके के अपने देशी औषधा के मान मिला करके अर्बन में कुंडन दिए जा रहे, तो कुंडन देने वालों एक प्रकार से वो कपट कर है और एक प्रकार से धोखा बाजी है, धोखा धोखे दे रहे। तो यह बात आजकल कथे कथे चल पड़ी है। इस वास्ते जैसी औषधि विचार कर ही देनी चाहिए। असली बात तो यह है कि बीमारी को होने और मृत्यु है वो प्राण पर निर्भर है, किंतु आपने मन के मन धैर्य नहीं हुआ है तो इसलिए कोई औषधि को व्यवहार करना चाहिए, किंतु वो सात्विक औषधि को व्यवहार करना चाहिए। ये मेरा काम है। अब मैं फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ। एक प्रकार से मैं नीचे उतरता उतरता उतर गया व्याख्यान के बीच के मन प्रकरण छोड़कर दूसरे प्रकरण पर आ गया। तब अपना प्रकरण वो है कि एक निष्काम असली और एक निष्काम असली के मां शैतान को मिश्रण, तो वहां भी वो संकरता को दोष आ गए। तो ये संकरता को जो दोष है बड़े नीचे दर्जे को थी, नीचे दर्जे को है। ईश्वर की भक्ति के मां भी संकरता को दोष मिल जाए तो विलंब है। इसलिए भगवान कहते हैं मान चाहिए विचार में भक्ति योग से, मुझ परमात्मा के बीच में अभी विचार में भक्ति योग से जो सेवन कर रहा है वो तीनों गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाए। कौन है कि जिसमें जिसकी भक्ति के मन दो विचार दोष नहीं रखे, तो भक्ति के मन दो विचार दोष क्या रखे कि भगवान की भी भक्ति करे और साथ साथ के बीच के मन भगवान में भी प्रेम है और साथ साथ के मन विश्व में भी प्रेम है, या साथ साथ के बीच के में समझो कि दूसरे देवता में भी इस भाव है, तो वो व्यचार दोष है। देवताओं की उपासना करनी, उनकी पूजा करनी, ये तो अपना कर्तव्य है, ये दोष नहीं है। इसके लिए तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ये तो विधि बताई है कि देव जिस गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्ग ब्रह्मचर्य नहीं चाहते सारी नहीं तो पूछे थे। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, गुरुजन जो अपने से बड़े हैं, माता पिता आचार्य आदि पद में बड़े हैं या अवस्था में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, कर्म में बड़े हैं, किसी भी प्रकार से अपने बड़े हैं और समझे कि ज्ञानी महात्मा पुरुष है, तो इन्हें इनकी पूजा करना, सत्कार करना, आदर करना, सेवा करना, ये पूजा के अंतर्गत ये शरीर का ऐसे तप है और शरीर की बाहर भीतर की पवित्रता के ना बाहर की पवित्रता स्वच्छता सदाचार और आज जो मन सरलता और ब्रह्मचर्य को पालन और अहिंसा धर्म को पाल, ये शरीर संबंधी तप है, यानी शरीर को तप है, शारीरिक तप है, यानी समझो कि शरीर